हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, क्योंकि पहले की कोशिशें बेअसर रही थीं और झलक अब किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं थी। इसी बीच अस्पताल में झलक को डिस्चार्ज कर दिया गया। झलक ने गहरी सांस ली। अस्पताल से बाहर आकर उसने खुली हवा में जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार सांस ले रही हो। सिद्धार्थ ने उसकी ये हरकत देखकर चिढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? झलक ने बाहर का माहौल देखते हुए धीरे मुस्कुराते कहा, मिस्टर खुराना, देखिए तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। 6 दिनों से मैं हॉस्पिटल के अंदर पड़ी थी। आपने मुझे घूमने फिरने तक नहीं दिया। वॉशरूम से बेड, बेड से वॉशरूम, बस इतना ही मेरा सहारा था। अब खुली हवा में आकर मैं सांस भी न लूं। ये बेबाक जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने चुपचाप सर पर हाथ फेर लिया। सोचना शुरू कर दिया कि आखिर वो इस लड़की से बातें ही क्यों करता है, जबकि उसे पता है कि वो सीधे जवाब तक नहीं देती। फिर जल्दी से उस पर कड़कते हुए कहा, ठीक है, जाओ और फटाफट कपड़े बदल लो। हम आज ही प्राइवेट जेट से अपने शहर वापस लौट रहे हैं। झलक ने केवल हंसकर सिर हिलाया और जल्दी से कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलकर जब वो निकली तो उसने जीन्स और उसके ऊपर सफ़ेद कलर का टॉप पहना था। अपने लंबे घने बालों को कंधों पर खुला छोड़ रखा था। उसका खूबसूरत चेहरा किसी मेकअप का मांग नहीं करता था। उसके होठों की स्टाइलिंग उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। जब झलक तैयार होकर निकली तो सिद्धार्थ की नज़र सीधी उस पर ठहर गई। झलक ने चोरी छिपे वो अंगूठी जो उसने आर्यन से खरीदी थी अपनी जीन्स की पॉकेट में रख ली। सिद्धार्थ ने ये देखा और भीतर ही भीतर ठान लिया कि चाहे जो भी हो, झलक और आर्यन की शादी वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा और वो अंगूठी लौटवा कर ही रहेगा। ये सोचते हुए उसके दांत मिसमिसा उठे। फिर झलक ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, मिस्टर खुराना, चलिए हम चलें, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सिद्धार्थ केवल देखते रह गया। थोड़ी देर में रोनित प्राइवेट जेट के साथ वहाँ आ पहुँचा। रोनित ने जब झलक और सिद्धार्थ को साथ आते देखा तो उसके हाथ पांव कांप उठे, क्योंकि जितनी पावर और एटीट्यूड सिद्धार्थ में था, उतनी ही पावर और एटीट्यूड झलक में भी था। रोनित मन ही मन सोचने लगा कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है। जब से उसने झलक को देखा था, वो समझ चुका था कि ये लड़की किसी से कम नहीं, और अगर किसी में हिम्मत है अपने बॉस को टक्कर देने की, तो वो यही लड़की है। ये सोचकर रोनित के अंदर एक अजीब सी कड़क कंपन उठी। कुछ घंटे के सफर के बाद वे सीधे मुंबई पहुंचे। जैसे ही वे जेट से उतरे, बाहर कई कारें खड़ी देखकर झलक चौंकी। कितनी सारी गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं जो सिद्धार्थ खुराना को लेने के लिए आई थीं। झलक ने सोचते हुए पूछा, सिद्धार्थ तो एक ही गाड़ी में जाएगा, तब ये सब बाकी गाड़ियां किस लिए आई हैं? रोनित यह सुनकर केवल हैरान रह गया। तब झलक मजाक उड़ाते हुए बोली, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा बॉस हर 5 मिनट पर कोई नई गाड़ी में बदलता है? ये सुनकर रोनित बस चुप रहा। उसके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ की आग उगलती नजरें उसी पर थी। वहीं पूरे रास्ते सिद्धार्थ केवल झलक को देखता रहा। उसकी नजरें झलक को एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। झलक की मुस्कान, उसके बाल, हवा में उड़ती उसकी बनावट, ये सब उसकी आंखों पर जैसे ठहर रहे थे। झलक बाहर का नज़ारा देख रही थी, पर सिद्धार्थ की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिक गई थीं। झलक को यह एहसास हो गया और वो जानबूझकर ऐसे बर्ताव करने लगी मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में ये बात बार बार चल रही थी कि उसने आर्यन से जो अंगूठी खरीदी, वो उसके लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हुई है। उसे यही लगता था कि अगला कदम यही होगा, अंगूठी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना। झलक ने सोचा, वैसे भी अब वो यहाँ शहर में रहकर क्या करेगी? कितनी महंगी अंगूठी उसके हाथ में लगी है, क्यों ना उस अंगूठी को बेचकर 20 लाख रुपए मिल जाएं, तो वो आसानी से अपने अकाउंट में पैसे डालकर अपने मन के अनुसार अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है और एक केक शॉप खोल सकती है। इसके अलावा उसे और क्या चाहिए? बस कहीं ना कहीं झलक को चिंता सिर्फ और सिर्फ दादी की थी। वो सोच रही थी कि दादी न जाने उसके बारे में क्या सोचेंगी। झलक ने सोचा कि उसे घर जाकर दादी को अपना डिसीजन बता देना चाहिए, कि अब वो यहाँ शहर में नहीं रहना चाहती। वैसे भी शहर की इतनी कड़वी यादें उससे जुड़ चुकी थीं कि वो अब उन यादों का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने ठान लिया कि उसे अब सीधे जाकर दादी से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसीलिए झलक ने पूरे रास्ते अंगूठी बेचने का प्लान बनाते हुए जल्दी ही खुराना मेंशन की ओर कदम बढ़ा दिए। अब जैसे ही झलक खुराना विला पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वाकई उसे लगा कि शायद वो सचमुच अपने घर लौट आई है। दादी का प्यार और अपनापन सोच सोच कर कहीं न कहीं उसकी आंखें भर भर आ रही थीं। वहीं सिद्धार्थ, जो हर तरीके से झलक को नोटिस कर रहा था, सोच रहा था, आखिर ये लड़की क्या है? कभी एकदम गुंडी बन जाती है, किसी को दौड़ा दौड़ा कर गालियाँ देती है, शराब पीती है, दारू पीती है, बिंदास घूमती है, और कभी अचानक रो पड़ती है। आखिर क्या है इस लड़की की कहानी, और ये इतनी उदास क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सिद्धार्थ इस वक्त झलक की धुन में था, लेकिन वो उससे सवाल नहीं कर पाया कि आखिर उसकी आंखों में नमी का क्या कारण है। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वहीं झलक जल्द से जल्द दादी से मिलना चाहती थी, इसलिए बिना देर किए वो खुराना विला के बेहद खूबसूरत गार्डन को पार करती हुई सीधे लिविंग रूम में पहुंच गई, जहां दादी ने चश्मा लगाया हुआ था और आराम से अखबार पढ़ रही थीं। क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, उसकी खबरें अभी तक अखबार की सुर्खियों में छाई हुई थीं। कहीं ना कहीं दादी इस वक्त झलक को लेकर काफी फिक्रमंद भी थीं, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ और झलक दोनों का ही नंबर कई बार ट्राई किया था। हालांकि सिद्धार्थ ने उस दिन दादी से केवल हल्की फुल्की बातें ही की थीं, कुछ खास बताया नहीं था। उसने बस इतना कहा था कि झलक ठीक है, लेकिन झलक से उसने बात नहीं करवाई थी, इसलिए दादी कहीं ना कहीं झलक के बारे में सोचते हुए बैठी थीं। तभी झलक की आवाज़ कानों में गूंजी, दादी। दादी ने चौंक कर अखबार नीचे रख दिया और सामने देखा। झलक, क्या ये सच में तू है मेरी बच्ची? तू आ गई? ये सोचकर दादी जल्दी से उठ खड़ी हुई और जाकर झलक के गले रख गईं। वहीं झलक भी दादी से इस तरह मिली जैसे कई सालों बाद बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ीं। झलक के सामने बीते 10 से 15 दिनों की सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूम गईं। वहीं दादी ने जल्दी से झलक के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? यह कहते हुए दादी का गला भर आया था। दादी का इतना प्यार पाकर झलक खुद को रोक नहीं पाई। उसने फिर से दादी को कसकर गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों परेशान होती हैं? और अगर आप ऐसे ही आंसू बहाती रहीं तो पक्का मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। वहीं सिद्धार्थ खुराना बिना किसी इमोशन के खड़ा होकर झलक और उसकी दादी को देख रहा था। साथ ही साथ वो मन ही मन सोच रहा था कि दादी ने कभी मुझे आज तक खुलकर इस तरह से प्यार नहीं जताया जितना प्यार वो झलक को जताती रही हैं।
लेकिन फिर भी उसे एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। फिलहाल दादी ने तुरंत झलक से कहा था, आ बेटा बैठ, और उसे सोफे पर बैठा दिया था। खुद उसके पास बैठकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, बात तो बता, क्या खाकर आई है तू? कितनी दुबली पतली हो गई है। क्या तूने ठीक से कुछ खाया भी नहीं वहाँ? जब मुझे पता चला कि उस पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है तो मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। मुझे लगा कि मैं तुझे खो दूंगी।